And we want to mention a few of the most basic principles of Bible interpretation.
वचन बाइबल के व्याख्यान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण किंतु आधारभूत सिद्धांतों को हम वर्णन करेंगे हम.
And I know and trust perhaps that most of you have heard these before.
और मैं जानता हूं और विश्वास करता हूं कि आप में से कई लोगों ने इनमें से अधिकांश सिद्धांतों के बारे में पहले सुना है.
But many problems in the preaching in India is a failure or a violation of one of these simple principles.
और भारत में प्रचार की असफलता का मुख्य कारण यह है कि इन सिद्धांतों का सही तरह से पालन नहीं किया गया है.
Now, Bible interpretation is much more detailed than these basic principles.
और जो हम सिद्धांत बता रहे हैं उनसे कहीं अधिक विस्तार से कहीं और अधिक बाइबल व्याख्यान के सिद्धांतों से शिक्षा होती है.
But we're trying to make you sensitive to the word of God.
लेकिन हम आपको परमेश्वर के वचन के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास कर रहे हैं.
And to come to the word of God with a holy fear.
और हम प्रण कर रहे हैं कि आप परमेश्वर के वचन के नजदीक आएं एक पवित्र भय के साथ.
But to come also to the word of God with a humble confidence.
लेकिन ना सिर्फ आप पवित्र भय के साथ आएं लेकिन एक नम्र भरोसे के साथ भी आप परमेश्वर के वचन के सामने आएं भरोसे के साथ.
Did you hear that?
क्या आपने ध्यान से सुना इस बात को?
Holy fear,
एक पवित्र भय,
and a humble confidence.
लेकिन साथ में एक नम्र भरोसा.
What is the holy fear?
पवित्रता के साथ भय किस बात का?
That I would mishandle the word of God.
तो हमारे अंदर डर होना चाहिए कि कहीं हम गलती से परमेश्वर के वचन का दुरुपयोग ना करें.
What is our humble confidence?
लेकिन साथ ही में हमारा नम्रता के साथ भरोसा क्या है?
God will help us by the Holy Spirit.
कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करेगा.
Paul said, "Who is sufficient for these things?"
पौलुस ने कहा कि इन बातों के लिए कौन है जो सक्षम है इसमें?
And we need to come with humility and dependency.
हमें नम्रता के साथ और परमेश्वर भरोसा रखते हुए आना है.
I want to mention eight, just list here for you, eight or ten of the most basic principles of interpretation.
और हम 8 से 10 बहुत ही आधारभूत सिद्धांत आपको बताएंगे परमेश्वर के वचन के व्याख्यान करने के.
If you will apply these things properly, it will help you in interpreting the word of God.
और अगर आप इन बातों को सही तरीके से लागू करेंगे तो परमेश्वर के वचन को सही तरह से व्याख्यान करने में आपको सहायता मिलेगी.
Now remember what we said.
और ध्यान दीजिए हमने क्या कहा.
This is the ABCs of the first grade of Bible interpretation.
और ये व्याख्यान के बड़े ही आरंभिक शुरुआती कदम है. आप ऐसा मान के चलिए.
But if you are wrong on this point, you will be wrong on all following points.
लेकिन अगर आप इन बातों में जो मैं आपको बता रहा हूं आधारभूत बातों में इनमें अगर आप गलत हो जाएंगे तो फिर आप संपूर्ण व्याख्या शास्त्र में गलत हो जाएंगे आप.
We talked about this before, but some of you are new, so we want to review it briefly.
हम इनके बारे में पहले बात कर चुके हैं लेकिन आप में से कुछ लोग नए हैं इसलिए हम पुनः दोहराएंगे जल्दी से.
Then we want to apply these principles to some of these questions.
और फिर इन सिद्धांतों को जो प्रश्न हमारे सामने उन पे हम लागू करने का प्रयास करेंगे.
Because it's one thing to write down these principles in your book.
क्योंकि अपनी पुस्तकों में सिद्धांतों को लिखना तो एक बात हो गई.
It's another thing to know how to use them and apply them.
लेकिन एक दूसरी बात होगी कि कैसे इनका उपयोग करना और इनको लागू करना अपने जीवन में.
I went in a man's home one time.
एक बार मैं एक व्यक्ति के घर गया.
And his carport where he parked his car.
और उसने जहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करता था कार पार्क में वहाँ में गया देखा.
He had all kind of new shiny modern tools.
और उसके पास हर एक तरह के नए आधुनिक चमचमाते हुए यंत्र थे.
He had different hammers.
अलग अलग तरह के हथौड़ियाँ थी.
He had different saws.
अलग अलग तरह के आरियाँ थी.
He had measuring sticks.
और अलग अलग तरह के नापने की
He had electric equipment.
और उसके बिजली से चलने वाले कई यंत्र थे.
It was all shiny and new and hanging on the wall.
बहुत ही सुंदर थे और नए थे और चमचमाते हुए दीवार पे लटके हुए थे.
I said, "These are beautiful. This is beautiful."
मैंने कहा ये बड़े ही सुंदर हैं तुम्हारे पास ये सारे यंत्र.
I said, "What do you make with them?"
और मैंने कहा तुम इन उपकरणों से क्या बनाते हो भाई.
He said, "I don't make anything."
उसने कहा मैं तो कुछ भी नहीं बनाता हूँ.
I just like nice new tools.
मुझे तो सिर्फ अच्छे नए टूल्स उपकरण पसंद हैं.
And they look good on my wall.
और वो मेरी दीवार पे दिखने में बढ़िया लगते हैं.
Now listen carefully. A lot of preachers like that.
बहुत सारे प्रचारक इस तरह के होते हैं.
They can write down the tools.
वो लिख तो सकते हैं कि क्या सिद्धांत है व्याख्या शास्त्र के.
But they never use them.
लेकिन उनको कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं वो लोग.
Or they can write down the tools.
और वो लिख सकते हैं उन यंत्रों के बारे में.
But when they go to the Word of God, they forget them all.
लेकिन जब वो परमेश्वर के वचन में आता है अध्ययन करने के लिए तो सारे यंत्र सारे उपकरण भूल जाते हैं वो.
A few basic principles of proper interpretation.
कुछ आधारभूत सिद्धांत सही तरह से व्याख्या करने के.
Let's start at the very beginning.
आइए हम सबसे आरंभ में ही आरंभ करेंगे.
Number one.
पहली बात.
Be able to correctly identify the type of literature you are interpreting.
सबसे पहली बात, जिस साहित्य का आप अनुवाद कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, उसके सही प्रकार की शैली को पहचानना.
What do we mean?
जिस साहित्य का आप व्याख्या कर रहे हैं उसके सही प्रकार की शैली को पहचानना, ये सबसे पहली बात है. तो कौन सी शैली है, सबसे पहली बात कौन सी शैली, किस तरह का लेखन है, किस प्रकार का लेखन है, ये प्रश्न पूछना है. हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, व्हाट हम कहना चाह रहे हैं.
The Bible was written by different men over a long period of time.
और परमेश्वर का वचन बाइबल अलग अलग मनुष्यों के द्वारा बड़े ही लंबे समय पे लिखा गया है.
Now we've mentioned this before.
ये हम पहले बता चुके हैं आपको.
There is historical narrative or historical literature in the Bible.
तो हमने आपको बताया कि बाइबल में ऐतिहासिक वृत्तांत पाए जाते हैं.
There is poetry in the Bible.
और बाइबल में ना सिर्फ ऐतिहासिक वृत्तांत या घटनाओं का वर्णन है, लेकिन साथ ही साथ बाइबल में काव्य भी है, कविताएं भी पाई जाती हैं.
There's what we call wisdom literature in the Bible, or proverb type words.
और ना ही काव्य या कविताएं बाइबल में पाई जाती हैं, लेकिन बुद्धि के भी वचन पाए जाते हैं, और उनमें से कुछ को नीति वचन कहा जाता है, बुद्धि के साहित्य. तो अलग अलग तरह की लेखनी, अलग अलग तरह की शैली है बाइबल में.
There is gospel narrative in the New Testament.
और ना सिर्फ ऐतिहासिक वृत्तांत हैं, लेकिन नए नियम में सुसमाचार के वृत्तांत, सुसमाचार की घटनाओं का वर्णन है.
There are parables in the Bible.
और बाइबल में दृष्टांत भी पाए जाते हैं, जो कि एक अलग तरह का प्रकार की शैली, लेखन तरीका है, लिखने का प्रकार है.
There is prophecy in both the Old and the New Testament.
और ना सिर्फ ये है, लेकिन इसके साथ साथ भविष्यवाणियां भी पाई जाती पुराने नियम में और नए नियम में, और ये एक दूसरे तरह का प्रकार है, दूसरे तरह का शैली है, लिखने का तरीका है साहित्य को.
And there are different figures of speech, there are different types of literature.
और ये अलग अलग तरह के figures of speech, लिखने के प्रकार, अलंकार, अलंकार, रूपक, अलंकार, अलंकार, figures of speech क्या बोलते हैं? अलंकार होते हैं, भाषा के लिखने के बोलने के तरीके अलग अलग हैं, अलग अलग यहाँ.
And we use different principles to interpret different kinds of literature.
तो अलग अलग तरह के साहित्य को, कहने का मतलब यह है, अलग अलग प्रकार के साहित्य को समझने के लिए अलग अलग तरह के उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, उनका अनुवाद करने के लिए, व्याख्या करने के लिए.
So if I ask you this question,
अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं,
Book of Genesis,
उत्पत्ति की पुस्तक,
What kind of literature?
किस तरह का साहित्य है?
Primarily history.
प्राथमिक तौर पे वो एक इतिहास का वर्णन है, ऐतिहासिक वृत्तांत है.
Proverbs.
नीति वचन. Poetry. They all are saying poetry.
They did say poetry.
They are saying poetry, yeah.
Now there's a difference between poetry and wisdom literature.
कविता में, काव्य में. गद्य पद, गद होगा कि पद होगा, पद में, पद में, कविता में, काव्य में, और बुद्धि के साहित्य में हल्का सा फर्क है.
And you interpret them in slightly different ways.
और पद को और बुद्धि के के साहित्य को हल्का सा फर्क तरीके से अनुवाद करेंगे.
There is also teaching or doctrinal or epistolary literature.
और साथ ही साथ शिक्षा के सैद्धांतिक या पत्रियों के साहित्य है नए नियम में.
And some types of literature contain other types of literature within it.
और कई बार कुछ साहित्यों के भीतर अलग अलग तरह के साहित्य पाए जाते हैं.
For example, the Gospels may contain parable.
उदाहरण के तौर पे जब सुसमाचारों को हम पढ़ते हैं तो सुसमाचार के भीतर दृष्टांत को पाते हैं हम.
The Gospel of John is history, but it may contain teaching.
तो उदाहरण के तौर पे यूहन्ना का सुसमाचार यद्यपि ऐतिहासिक वृत्तांत है, लेकिन उसके बीच में शिक्षाएं भी पाई जाती हैं.
The Gospel of Matthew is gospel, but it may contain prophecy.
लेकिन उत्पत्ति सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार यद्यपि सुसमाचार है, लेकिन उसके भीतर भविष्यवाणियां भी पाई जाती हैं.
And you need to know where you are in the Bible.
और आपको इस बात को ध्यान देना है कि जब आप बाइबल पढ़ें तो आप किस तरह के साहित्य में, किस खंड में, किस हिस्से में.
And what kind of literature you are in.
तो आपको ये ध्यान देना है कि आप बाइबल में कहां पे हैं, कहानी के कहां पे हैं, किस हिस्से में, और ना सिर्फ ये किस हिस्से में लेकिन किस तरह के साहित्य में हैं आप.
Number two.
दूसरी बात.
You must be familiar with the historical and cultural background.
और आपको ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आपको रूबरू होना पड़ेगा, जानकारी रखनी पड़ेगी.
You need to understand what point of history you are in.
आपको ये समझना पड़ेगा किस इतिहास के समय में आप पाए जाते हैं.
And what peculiar culture you are in.
और आप किस विशेष सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में हैं.
Now we've talked about this before.
हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं.
And we'll see that applied to some of these examples.
और हम इनके कुछ उदाहरणों पे इनका लागूकरण देखेंगे.
But you at least need to have some basic understanding of the period of history that you are studying.
तो जब आप परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ते हैं तो जो खंड आप पढ़ रहे हैं उस खंड का उस समय के जो इतिहास से संबंधित इतिहास है उसके बारे में आपके पास थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए सही तरीके से व्याख्या करने की.
For example,
उदाहरण के तौर पे,
was Job a real person?
अय्यूब क्या वो एक वास्तविक व्यक्ति था कि नहीं था?
ऐसा लगता है था.
What period of time in history was Job?
अच्छा ठीक है, अगर असली व्यक्ति था तो इतिहास के किस समय में पाया जाता है वो?
Probably prior to the kings.
Does Job contain any poetry?
क्या अय्यूब की पुस्तक में काव्य पाया जाता कि नहीं पाया जाता?
Does Job contain any history?
क्या अय्यूब में इतिहास पाया जाता नहीं पाया जाता?
You need to understand where you are in history and what culture you are in.
आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जिस खंड को आप पढ़ रहे हैं उस खंड के समय के किस इतिहास के भाग में आप हैं और किस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में चल रहे हैं आप.
Sometimes you cannot get that on your own, so many of you need to try to find a useful Bible encyclopedia, which I'm sure you have in Hindi, right?
No.
They do have a few heads. They do have. तो कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको अपने आप नहीं पता चलेगी, तो उसको जानने के लिए आपके पास कुछ पुस्तकें होनी चाहिए बाइबल के अलावा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए, जानकारी लेने के लिए. जैसे टीका होती है, टीका कॉमेंट्री आते हैं या फिर बाइबल डिक्शनरी आते हैं, है ना, शब्दकोश, बाइबल के शब्दकोश.
Type of literature.
किस तरह का साहित्य है?
Historical context.
ऐतिहासिक संदर्भ.
Cultural background.
और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि.
Number three.
और तीसरी बात.
You need to study closely the larger and the immediate context of a passage.
और आपको जो उसके जो खंड पढ़ रहे हैं उसके नजदीक का बड़ा और साथ का एकदम उसके पास के पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा, संदर्भ को.
This is one of the most important basic principles of Bible interpretation.
और बाइबल के अनुवाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है. तो जो खंड पढ़ रहे हैं उसके आसपास का, तुरंत आसपास के, और उसके उसका बड़ा, जो नजदीकी का, जो बड़ा आगे पीछे का जो संदर्भ है उसको समझना है.
Very simple but very important.
बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ प्रकार को समझना है, ना सिर्फ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समझना है, लेकिन वहां का जो जो खंड है उसके आसपास का जो संदर्भ है उसको हमें ध्यान देना है. संदर्भ 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 आप बार बार सुन रहे हैं, संदर्भ बहुत जरूरी है.
You cannot take a verse out of its context.
और हम बार 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 आपको इस बात पे दबाव दे रहे हैं कि कोई भी पद को उसके संदर्भ से मत निकालिएगा, आप तोड़िएगा मरोड़िएगा नहीं, बहुत जरूरी संदर्भ में देखना, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए अपने.
You must ask this question.
आपको अपने से ये प्रश्न पूछना चाहिए.
What do these verses, what did they mean to the author's original audience?
और आपको एक प्रश्न ये पूछना चाहिए. जब भी आप कोई पद पढ़ें, खंड पढ़ें, तो आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि जो पद हम पढ़ रहे हैं अभी, जब उस पद को पहले आरंभिक पाठकों ने सुना होगा, पहले पाठकों ने पढ़ा होगा, तो उनको क्या समझ में आया होगा, उनके लिए क्या मतलब है इस स्थल का, इसका ये प्रश्न जरूर पूछेगा. ठीक है, आरंभिक पाठकों का क्या मतलब बनता है इस खंड का?
We are trying to answer this question.
हम इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं.
For example,
उदाहरण तौर पे,
when Paul was writing 1 Corinthians,
जब पौलुस पहला कुरिन्थियों लिख रहा है चिट्ठी,
what was the situation of the Corinthian church?
तो हमको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि उस समय कुरिन्थियों की कलीसिया में क्या स्थिति चल रही है?
What is the historical and cultural background and condition of the Corinthian church?
हमको प्रश्न पूछना चाहिए कुरिन्थियों की कलीसिया का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और वहां पे क्या सांस्कृतिक बातें चल रही है. उन दोनों को हमको प्रश्न पूछना चाहिए, ध्यान देना चाहिए जब हम पहला कुरिन्थियों को सही तरीके से समझना चाहते हैं.
And before we take a verse out of its historical context and try to apply it to ourselves, we need to ask what did it mean for the original audience.
और इससे पहले कि हम उस खंड में से एक पद को निकाल लें और अपने ऊपर लागूकरण कर लें और कहें इसका मतलब ये है, हमको पहले मेहनत करना, प्रयास करना है, प्रश्न पूछना है कि उस पद का उस समय वहां के जो पहले असली पाठक थे उनके लिए क्या अर्थ है, हमको ये समझने की कोशिश करना है.
For example,
उदाहरण के तौर पे,
some people say this,
कुछ लोग ये कहते हैं,
when Paul wrote the book of Romans,
जब पौलुस ने रोमियों की पुस्तक लिखी,
he sat down to write a systematic theology,
तो वो बैठ करके एक सुव्यवस्थित धर्म विज्ञान की पुस्तक को लिख रहा था,
and his main subject was justification,
और उसका जो मुख्य विषय था वो धर्मी ठहराया जाना था.
But listen carefully,
लेकिन ध्यान से सुनिए,
if you do not understand the original audience,
अगर आप जो असली वास्तविक पहले वहां के दर्शकों के बारे में ध्यान नहीं देंगे, कौन लोग हैं सुनने वाले पाठक लोग,
what was the condition of the Roman church,
और रोमियों की कलीसिया की समस्या क्या थी या स्थिति क्या थी, अगर आप इसको नहीं समझेंगे,
what were the problems in the Roman church,
अगर आप ये नहीं समझेंगे कि वहां की कलीसिया की समस्या क्या थी,
is there anywhere where Paul says why he is writing the Roman church,
क्या रोमियों की पुस्तक में कहीं पौलुस ये चिट्ठी लिखते हुए बताता है कि वो क्यों करके इस चिट्ठी को लिख रहा है रोमी कलीसिया को,
if you can't answer those three basic questions,
और अगर आप इन तीन आधारभूत प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं,
who's he writing to,
किसको लिख रहा है ये,
what is their condition,
उनकी परिस्थिति क्या है,
why is he writing,
क्यों लिख रहा है वो उनको,
that's very simple,
बहुत साधारण बात है,
he wasn't sitting down to write a detailed systematic theology,
वो बैठ करके कोई विस्तृत सुव्यवस्थित धर्म विज्ञान की पुस्तक को नहीं लिख रहा,
he was writing to real people in a real church that had real problems,
वो वास्तविक लोगों को वास्तविक कलीसिया में वास्तविक समस्या का समाधान करने के लिए उनको ये पत्र लिख रहा है.
And there were two problems in the Roman church.
और रोमियों कलीसिया में दो मुख्य समस्याएं थी.
And Paul wrote to address those two problems.
और पौलुस ने उन दो मुख्य समस्याओं का समाधान करने के लिए चिट्ठी लिखी.
But most people jump right over Rome and go 2,000 years to us today.
और लेकिन कई लोग 2,000 साल को भूल जाते हैं और कूद करके सीधे रोमियों की पुस्तक से लेकर के अपने ऊपर लागू कर लेते हैं.
So you must be sensitive to historical context.
तो आपको ऐतिहासिक जो संदर्भ है उसको ध्यान में रखना है, संवेदनशील
होना है. The original recipients of the letter.
और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो उसके आरंभिक वास्तविक जो पाठक थे वो कौन थे.
The condition of the church.
और वहां की जो भी कलीसियाएं थी उनकी परिस्थिति क्या थी.
And try to answer this question.
और इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करिए.
Why did Paul write this?
क्यों पौलुस ने ये चिट्ठी लिखी है.
When we do Bible interpretation,
जब भी हम वचन का अनुवाद करते हैं,
for example, when we look at a verse that the apostle Paul has written,
और उदाहरण के तौर पे जब हम कोई पद लिखते हैं जो देखते हैं जिसको पौलुस ने लिखा है, प्रेरित पौलुस ने लिखा
है, I do not allow a woman to preach or exercise authority over a man.
मैं किसी स्त्री को अनुमति नहीं देता कि वो किसी पुरुष के ऊपर अधिकार जताए.
When Paul wrote those words,
जब पौलुस ने उन शब्दों को लिखा,
what was he thinking in his mind?
उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा था?
That is what we're trying to discover.
और ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं.
Not what you think he's thinking.
ये नहीं कि आप क्या सोचते हैं कि वो क्या सोच रहा
है इसके बारे में. Not what you're thinking.
ये नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं उस पद के बारे में.
We're trying to get the author's intent, his meaning.
लेकिन हम उस जो लेखक है उसकी मंशा क्या थी, आशय क्या थी, उनके विचार क्या थे, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं.
So you must study the larger and the immediate context.
तो हमको प्रयास करना चाहिए कि उसका जो भी खंड पढ़ रहे हैं उसका बड़ा और नजदीकी पास का संदर्भ क्या है उसको जाने हम.
Number four.
चौथी बात.
Number four.
चौथी बात.
Be generally familiar, if you can, with some basic grammar and structure of a passage.
तो अगर आपसे हो सकता है तो आधारभूत व्याकरण और खंड के ढांचे संरचना से जान पहचान करने की कोशिश करिए.
Does Hindi have a sophisticated grammar?
Very sophisticated, but I don't know.
Oh, you don't know it?
I don't know grammar.
Oh.
We have, but I don't know. Inko malum hai. He knows.
Listen carefully.
Dhyan se suniye baat ko.
Bible was written in Greek, New Testament.
Bible jo hai, jo naya niyam vishesh taur se, wo Yunani bhasha mein likha gaya hai.
Greek is very specific.
Aur jo naya, jo Yunani bhasha hai, wo bahut hi sateek hai.
And the Bible writers had a great amount of useful words, phrases, and structures they could use.
और जो बाइबल के जो लेखक हैं, उनके पास बहुत सारे शब्द थे, वाक्यांश थे, संरचनाएं थी, ढांचे थे, भाषा का उपकरण थे, जिनको वो उपयोग कर सकते थे लिखने के लिए परमेश्वर के वचन को.
You say, well, I don't know Greek.
आप हो सकते हैं कि मुझे तो यूनानी भाषा नहीं आती.
So what do I do?
तो फिर मैं क्या करूँ?
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए बात को.
Most translations.
अधिकांश जो अनुवाद हैं. चाहे वो अंग्रेजी क्यों,
Chinese,
या चीनी भाषा क्यों,
हिंदी
क्यों,
स्पैनिश
भाषा क्यों,
they are adequate translation.
वे काफी उत्तम अच्छे अनुवाद हैं.
And you need to be familiar with some basic grammar and structure of Hindi language.
तो आपको जो अगर आप हिंदी भाषा बोलते हैं तो आपको हिंदी भाषा के आधारभूत व्याकरण के ढांचे संरचना को समझना पड़ेगा.
That doesn't mean you have to know a lot of grammar.
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा व्याकरण मालूम होना चाहिए.
But when I say this,
लेकिन जब मैं ये कहता हूँ,
a sentence has three basic parts.
एक वाक्य में तीन मुख्य हिस्से होते हैं.
Subject,
विषय,
verb,
क्रिया,
object,
और कर्म.
The subject does the action.
तो क्या बोलते उसको, कर्ता. जो कर्ता होता है तो कर्ता और क्रिया और कर्म, कर्ता क्रिया कर्म, एक वाक्य में तीन हिस्से, कर्ता क्रिया कर्म.
And the verb describes the action.
तो कर्ता जो है कार्य को करता है और क्रिया जो है बताता है क्या कार्य किया जा रहा है.
And the object receives the action.
और कर्ता कर्म कर्म भैया हमको नहीं मालूम, आप लोग को मालूम है कर्ता कर्म और क्रिया. कर्ता क्रिया कर्म, कर्म क्रिया कर्ता, कर्ता कर्म क्रिया. समझ गए नहीं समझे?
Did you graduate from grade school?
I didn't study Hindi grammar. आप समझ गए नहीं समझे? तीन चीजें होती हैं, एक करने वाला, एक के पर हो रहा है, और एक कुछ जो कार्य हो रहा है उसको समझाया जा रहा है जो हो रहा है. बाद में राजाराम भैया जो क्लास लेंगे आप लोग की व्याकरण की 5:30 बजे.
For example,
उदाहरण के तौर पे,
the boy hit the ball.
लड़के ने गेंद को मारा.
What's the subject?
यहाँ पे कर्ता कौन है?
What's the verb?
कर्म क्या है? क्रिया क्या है?
What's the object?
कर्म क्या है? कर्ता क्या है? क्रिया क्या है? आप लोग को आता जाता कुछ है नहीं.
You must understand some basic grammar.
आपको आधारभूत व्याकरण को समझना पड़ेगा.
For example,
उदाहरण तौर पे,
Ephesians 1
का पहला अध्याय,
it says God chose us.
परमेश्वर ने हमको चुना.
What's the subject? Who's the subject?
God.
What's the verb?
Chose.
What's the object? Now, if you turn it around, make the object the subject.
और अगर आप वहां पे कर्ता और कर्म को उल्टा कर देंगे,
your theology will be wrong.
तो जो आपका जो धर्म विज्ञान है वो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
If you say we, chose God.
अगर आप उसमें ये कर देंगे परमेश्वर ने हमको चुने के बजाय आप उसको ये कर देंगे हमने परमेश्वर को चुना.
You have your grammar backward.
तो आपने जो है आपकी व्याकरण उल्टा होगी कि नहीं होगी.
This is very simple.
तो ये बड़ा सरल बात है. ये इसी बात को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं.
You may not have graduated from third grade or sixth grade.
और हो सकता है कि आपने तीसरी कक्षा या छठी कक्षा पढ़ाई नहीं की होगी.
But you can understand this.
लेकिन आप इसको समझ सकते हैं.
Some of the Bible tells stories.
कुछ परमेश्वर के वचन कहानी बताते हैं.
Some of the Bible teaches objective truth.
और कुछ हैं जो परमेश्वर के वचन जो है कुछ सीधे सीधे सत्य को बताते हैं.
Know some basic grammar.
कुछ आधारभूत व्याकरण को समझिए.
Does Hindi have prepositions?
Yes. Proposition क्या क्या बोलते हैं? नहीं नहीं सर नाम नहीं प्रपोजिशन समुच्चय बोधक कंजंक्शन हो गया. प्रपोजिशन क्या होता है?
Does it have conjunction?
Yes. We have it. I don't know what it's called in Hindi.
Listen.
संयोजक समुच्चय बोधक संयोजक आप पढ़े नहीं क्या आप लोग?
Does Hindi have participles? You know a participle?
Participles are हम जिन्होंने ग्रीक पढ़ा था participle को हिंदी में क्या बोला था आप लोगों ने? Participles को वाक्यांश होते हैं? नहीं वाक्यांश नहीं होते हैं. वाक्यांश is it वाक्यांश? No. What is it called in Hindi?
All right, well let's forget.
Why are you even getting into this? No, we don't have specific. I don't know if we have in Hindi. We know that we have in Hindi. I don't know what they are called, so I can't actually literally translate it.
Okay, we'll get that.
Do you know what it's called in Hindi?
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए इस बात को.
You need to know at least two or three things then about grammar.
आपको दो या तीन चीजों को सीखना है व्याकरण के बारे में.
Number five.
पांचवी बात.
Here's a basic principle.
यहाँ पे आधारभूत बातें हैं सिद्धांत हैं.
Individual words have different must be defined by their usage in their context.
जो शब्द हैं जो भी विशेष शब्द हैं कोई भी शब्द है उसको हमको उनके संदर्भ में ही उनको परिभाषित करना है.
In other words, though a word may not mean the same thing in different context.
और हो सकता है कि वो जो शब्द है वो दूसरे संदर्भ में उसका वो मतलब नहीं होगा.
For example,
उदाहरण के तौर पर
John chapter 1.
यूहन्ना उसका पहला अध्याय.
Now this is very basic but very important.
और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत ही आधारपूर्ण है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात.
John chapter 1 verses 9 and 10.
यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 9 और 10 पद.
And these two verses, how many times does John mention the word world?
और यहाँ पे जब आप देखेंगे यूहन्ना उसके पहले अध्याय में कितनी बार यूहन्ना यहाँ पे संसार शब्द का उपयोग करता है? 9 और 10 पद में.
That's not good.
No, it's good. It's good.
You got a word for world?
Yeah.
Same word 4 times?
Yes.
How many times?
यहाँ पे 9 पद में देखिए संसार या जगत शब्द को कितनी बार उपयोग करता है यूहन्ना?
Four times.
Yeah. चार बार.
Does that word mean the same thing every time it's mentioned?
क्या जो शब्द जगत है यहाँ पे उपयोग किया गया 9 और 10 पद में क्या इसका मतलब यही है हर बार जब ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है?
May have slightly different meanings each time it's mentioned.
हर बार जब जब जगत शब्द का उपयोग किया गया है तो जरूरी नहीं है उसका मतलब एक ही हो. अलग अलग जगह में संदर्भ के अनुसार उसका हल्का सा अलग मतलब हो सकता है.
And if you trace the word world through the Gospel of John, you'll see that it has slightly different meanings in different contexts.
और अगर आप इस शब्द का अध्ययन करेंगे यूहन्ना में ही तो आप देखेंगे कि अलग अलग संदर्भ में उसका अर्थ हल्का सा फर्क होता है.
For example, the Pharisees told their friends, "You see, the whole world is going after him, behind him."
उदाहरण के तौर पे आप देखते हैं फरीसी लोग बोलते हैं, देखो उसके पीछे सारा जगत चला जा रहा है. यीशु मसीह के लिए बोलते हैं फरीसी लोग बात कर रहे हैं तो फरीसी लोग कहते हैं, देखो यीशु मसीह के पीछे संपूर्ण जगत चला, सारा संसार चला जा रहा है.
Said the whole world.
फरीसी लोग कह रहे थे, देखो पूरी दुनिया उसके पीछे लगी है.
Did he mean every man, woman, boy, or girl?
क्या उनका
वहां that had ever lived?
क्या उनका ये मतलब है इस संसार में जितने बच्चे बच्चियां और आदमी औरत सबके सब यीशु मसीह के पीछे चले आ रहे हैं
That's a specific meaning in different contexts.
लेकिन वहाँ पे विशेष संदर्भ के अनुसार उसका एक विशेष मतलब है.
Now this is one of the most basic principles of Bible interpretation.
और ये वचन का अनुवाद का एक बड़ा ही आधारभूत अर्थ सिद्धांत है.
Individual words are defined by their usage in a context.
अलग-अलग शब्द जो हैं वो अपने संदर्भ में किस तरह से उपयोग किए गए हैं उसके अनुसार उनका अर्थ समझा जाता है
There's a wrong principle of interpretation that many people use.
और कई लोग जब व्याख्या करने के लिए एक गलत सिद्धांत का उपयोग करते हैं.
They say the first time a word is used in the Bible, whatever that meaning is, that's the meaning of the word throughout all the Bible.
कई बार कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई भी शब्द बाइबल में उपयोग किया गया है कोई भी शब्द उपयोग किया गया बाइबल में अगर पहली बार कोई शब्द उपयोग किया गया और उसको जो मतलब है पहली बार वही मतलब संपूर्ण बाइबल में उस शब्द का होगा
Is that correct?
क्या ये बात सही है?
You have to define words according to their usage in different contexts.
तो आपको शब्दों को उनके संदर्भ के अनुसार ही परिभाषित करना पड़ेगा
You understand what we're saying?
आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं
Number six.
और छठी बात
You allow the clear, plain passages to interpret the unclear, obscure ones.
आप जो हैं वचन में जो स्पष्ट खंड हैं उनका आप उपयोग करेंगे अस्पष्ट खंडों को समझने के लिए.
That is, Scripture interprets Scripture.
और दूसरे शब्दों में परमेश्वर का वचन उपयोग करता है परमेश्वर के वचन को ही समझाने के लिए.
And that's what we call the interpretation circle.
और इसको हम बोलते हैं व्याख्या के वृत्त वृत्ताकार
वृत्त.
ये गोला है गोलाकार वृत्त है एक वृत्त है गोला है गोल
Here's another circle.
और उसी का एक और गोला है.
Here's another circle.
और फिर एक और गोला है.
Here's another circle.
और ढेर सारे गोले हैं.
Scripture interprets Scripture.
वचन ही वचन को समझाता है.
You're trying to interpret one verse.
हम एक पद को अगर समझने का प्रयास कर रहे हैं.
The first circle is the entire Bible.
तो जो पहला जो गोला है वो है संपूर्ण बाइबल.
Is there something in the Bible that helps us interpret or explain that verse?
तो हम ये पूछेंगे क्या बाइबल में कोई ऐसी बात है जो हमको उस पद को समझने में हमारी सहायता करती है कि नहीं करती है?
Another circle is it in the same type of literature?
और उसी एक और दूसरा गोला है वो ये है कि उसी के जैसे साहित्य में क्या कुछ पाया जाता है समझने के लिए
Another circle, is it by the same author?
और ना सिर्फ एक और तो एक है सबसे पहले बाइबल हो गया बाइबल में क्या पाया जाता है दूसरा देखा उसी साहित्य में क्या पाया जाता है फिर उसका देखा जाता है उसी लेखन की लेखनी में क्या पाया जाता है
And the last circle, is it in the same, by the same author in the same type of literature in the same book?
और फिर उसके बाद हम एक और जो खंड है जो गोला है वो ये है उसी लेखक के द्वारा उसी पुस्तक में उसी संदर्भ में क्या बोला जा रहा है
Or is it by the same author in the same type of literature in another book?
और या फिर उसी लेखक से किसी और पुस्तक में उसी तरह की बात का उपयोग किया गया कि नहीं किया गया
You say this is giving me a headache.
आप हो सकता है कह रहे होंगे ये गोल गोल चक्कर देख करके मेरे को चक्कर आने लगा
But listen carefully.
ध्यान से सुनिए इस बात को
If you want to properly interpret the word of God, you need to allow scripture to interpret itself.
अगर आपको परमेश्वर के वचन को सही तरह से व्याख्या करना है तो आपको परमेश्वर के वचन को ही उसका अनुवाद करने की अनुमति देना पड़ेगा
And the first thing you're looking for is this.
पहली चीज जो आप देख रहे हैं वो ये है
Same author in the same book.
एक ही लेखक उसी पुस्तक में
Same author in the same kind of literature.
वही लेखक उसी तरह के साहित्य में
Different authors in the same kind of literature.
अलग अलग लेखक लेकिन उसी तरह के साहित्य में
Different authors in different kinds of literature.
अलग अलग लेखक लेकिन अलग अलग तरह के साहित्य में
Same author in the New Testament.
वही लेखक नए नियम में.
The same author in the Old Testament.
वही लेखक पुराने नियम में.
So when you start thinking about these circles,
जब आप इन वृत्तों के बारे में वृत्ताकार आकार के बारे में सोचने लगते हैं, गोल गोल के बारे में सोचने लगते
हैं,
तो फिर आप गोल गोल से घूमते नाचते रहते हैं.
but listen carefully.
लेकिन ध्यान से इस बात को.
That is a very important principle of Scripture.
ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है वचन को समझाने का.
Scripture interprets itself.
परमेश्वर का वचन अपने आप को ही अनुवादित करता है.
And you must interpret the unclear passages in light of the by the clear plain ones.
और आपको जो अस्पष्ट खंड हैं उनको स्पष्ट खंडों के मदद से आपको व्याख्या करनी चाहिए उनकी.
Number seven.
और सातवीं बात.
Be sensitive to the progressive revelation of Scripture.
और जो कलीस वचन का जो प्रगतिशील प्रकाशन है उसके प्रति संवेदनशील रहना चाहिए आपको.
There's some things in the Old Testament that continue into the New, and some things that are discontinued.
और कुछ चीजें हैं जो पुराने नियम से नए नियम में आई हैं, जारी रही हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो नई जारी रुक गई पुराने नियम में, नए नियम में नहीं प्रवेश किया है.
And you must interpret any passage of Scripture in light of progressive revelation and redemptive history.
तो कोई भी चीज जिसका भी आप अनुवाद करें, जिस खंड का भी, उसको आप प्रगतिशील प्रकाशन जो कि हमारे उद्धार के इतिहास के संदर्भ में है उसके प्रकाश में होकर के आपको अनुवाद करना चाहिए.
And you do ask, does this passage say anything directly or indirectly about Christ and his kingdom or his gospel?
और आपको ये पूछना चाहिए कि जो भी खंड है क्या वो यीशु मसीह के बारे में है, यीशु मसीह के राज्य के बारे में सीधे तौर पे, या घुमा फिरा के हमको उसके बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है.
Number eight.
और आठवीं बात.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए इस बात को.
You must distinguish between what the Bible commands and what it describes.
और आपको ये देखना चाहिए, आपको ये फर्क करना मालूम होना चाहिए कि बाइबल जब हमको कोई बात को बताती है तो क्या उस चीज का वर्णन कर रही है या हमको आज्ञा दे रही है उसका.
This is especially true in historical literature.
और विशेष तौर से जब हम ऐतिहासिक साहित्य के बारे में अध्ययन करते हैं.
And especially in the book of Acts.
और विशेष तौर से प्रेरितों काम की पुस्तक को जब हम अध्ययन करते हैं.
Some things in the Bible are commanded.
कुछ चीजें परमेश्वर के वचन में हमको आज्ञा के रूप में दी गई हैं सीधे सीधे तौर पे.
Other things are just described.
लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमको केवल जिनका केवल वर्णन किया गया.
And you've got to determine what is commanded for all Christians everywhere and what has just been described for some Christians at a particular time.
और जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको मेहनत करके ये समझना पड़ेगा जो खंड हम पढ़ रहे हैं क्या वो हमको किसी बात का केवल वर्णन कर रहा है और वो उस समय के लोगों के बारे में हमको बता रहा है, या कि उसमें निर्देश दिया गया, आज्ञा दिए गए सारे विश्वासियों के हर समय के हर जगह के लिए, कोई सीधे सीधे उनको कहा गया इसको करना ही करना तुमको. तो फर्क समझना हमको दोनों के बीच में.
This is very, very important.
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये सिद्धांत है. ये
नंबर नाइन.
नवी बात.
अवॉइड लिटरल और स्पिरिचुअल एक्सट्रीम्स इन इंटरप्रिटेशन.
जब आप अनुवाद करेंगे, व्याख्या करेंगे, तो दो चरम परिस्थितियां हैं जिनसे आपको बच के रहना है. जो दो चरम स्थितियां हैं, पहली बात, या तो बिल्कुल जो लिखा है लकड़ी के समान यथार्थ अक्षरक्ष वैसे ही अनुवाद व्याख्या करते हैं कुछ लोग, जैसा है वैसे ही अक्षरक्ष, या दूसरा चरम स्थिति यह है कि हर चीज को बिल्कुल आत्मिक कर देंगे. दो चीज, या तो हर चीज को आत्मिक बना दिया, ठीक है, या तो फिर हर चीज को अक्षरक्ष जैसा लिखा है यथार्थ वैसे ही वैसा.
For example,
शब्द के अनुसार शब्द.
Jesus said, I am the bread of life.
उदाहरण के तौर पर यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं.
He that eats my flesh and drinks my blood has eternal life.
वो जो मेरा शरीर खाता है और जो मेरा खून पीता है उसके पास जीवन होगा.
And the Catholic Church says Jesus meant that literally.
और जो कैथोलिक चर्च है उनका ये कहना है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरा लहू पियो, मेरा शरीर पियो, तो खाओ, तो यीशु मसीह जो है literally शब्द ब शब्द वैसे यथार्थ अक्षरक्ष वही कह रहे हैं.
So when the priest holds up the cup,
तो जब जो उस कैथोलिक चर्च में जो प्रचारक होता है, priest होता है, वो अपने
holds up the bread,
कटोरे को पकड़ता है और रोटी को पकड़ता है,
and he prays over it,
और जैसे ही वो प्रार्थना करता है उसके ऊपर,
that bread and wine is miraculously changed into the literal body and blood of Jesus Christ.
तो जब जो फादर लोग हैं जो चर्च में हैं, वो लोग प्रीस्ट लोग जो पकड़े होते हैं रोटी और कटोरे को, तो जैसे ही प्रार्थना करते हैं तो एकदम से वहां पे चमत्कार होता है, और चमत्कार होकर के तुरंत वो कटोरा में जो लहू है वो ये वास्तव में लहू बन जाता है, और जो रोटी है वो वास्तव में मांस बन जाता है प्रभु यीशु मसीह का।
And when we drink his literal blood,
और जब हम लोग यीशु मसीह के लहू को पीते जो कि
वास्तव ही
लहू है,
his flesh between our teeth,
और उसके मांस को हम अपने दांत के बीच में डालते हैं, मतलब उसके रोटी को अपने दांत के बीच में डालते हैं,
we are not only confirming, we are adding to our justification.
तो जब हम ऐसा करते हैं तो कैथोलिक लोगों का ये मानना है हम लोग अपने धर्मी ठहराए जाने की बात को ना सिर्फ सही ठहरा रहे हैं लेकिन हम धर्मी ठहराए जाने में और बढ़ते चले जा रहे हैं।
So if you do not understand figures of speech, you got to work for that figures. If you don't understand figurative language.
हाँ जी, अगर आप अलंकारिक भाषा अलंकार को नहीं समझते हैं,
Jesus said, I am the door.
और यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही द्वार हूं।
Is he a literal door?
क्या वो एक यथार्थ दरवाजा है?
What does he mean?
मतलब क्या है उसे कहने का?
I am the way you enter into eternal life.
मतलब मेरे के द्वारा ही तुम अनंत जीवन के मार्ग पे प्रवेश करोगे।
I am the gate of the sheepfold.
और यीशु मसीह ने कहा कि मैं भेड़ों के द्वार का द्वार हूँ।
That means Jesus actually becomes a real gate.
क्या इसका ये मतलब कि यीशु मसीह वास्तव में भेड़शाला के वास्तविक दरवाजा बन जाते हैं?
It just simply means he is the way into eternal life, into the church, into salvation.
वो अलंकारिक भाषा का उपयोग करके बता रहे हैं कि वो अनंत काल के लिए अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए एक मार्ग रास्ता बन जाते हैं लोगों
के लिए। So you need to avoid the extremes of overt literalism.
आपको जो है चरम जो स्थिति है यथार्थ शब्द शब्द अक्षराक्ष जैसा लिखा गया उसको वैसे ही मानने से बचना है कई बार।
And you need to be sensitive that the scripture has a figurative language. I don't have words for metaphors and similes and things like that. It has figurative language.
आपको इस बात के प्रति संवेदनशील रहना है कि परमेश्वर के वचन में बहुत सारे चित्रात्मक शब्द हैं।
And you don't want to go to the other extreme of over-spiritualizing your interpretation.
तो एक तरफ आपको बच के रहना है कि आपको ध्यान देना है कि कुछ चित्रात्मक शब्द हैं और उनका मतलब यथार्थ अक्षराक्ष नहीं है, जो लिखा है वही नहीं शब्द बशब्द। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा खतरा ये है कि कुछ लोग हर चीज को केवल बहुत आत्मिक बना देते हैं।
For example, in the Song of Solomon.
उदाहरण के तौर पे श्रेष्ठ गीत में
the woman represents the church.
जो 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 महिला है वहाँ पे जो प्रेमिका है वो कलीसिया का प्रदर्शन करती है।
And we can say, well, that has some New Testament support.
और हम कह तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो श्रेष्ठ गीत है में जो महिला है वो कलीसिया के बारे में बात कर रहा है और हम कह सकते हैं हाँ नए नियम में इसका कुछ हम देखते हैं इसका वर्णन पाते हैं हम कुछ।
But some men went further.
लेकिन कुछ लोग और भी आगे बढ़ जाते हैं।
They described every particular part and that represented something.
और उन्होंने जो कुछ भी लिखा है विस्तार से उस सबको लेकर के फिर उन्हें बताया जो ये है इसका ये मतलब है।
For example, the woman's two breasts, they said, represented the Old Testament and the New Testament.
उदाहरण के तौर पे जब लोग बात करें जो महिला के जो दो स्तनों को वर्णन किया जा रहा है तो एक वर्णन करा पुराने नियम को एक वर्णन करा नए नियम को।
And the church takes milk from both the Old Testament and the New Testament.
और कलीसिया जो है पुराने नियम और नए नियम दोनों से दूध को ग्रहण करते हैं।
That sounds and makes good preaching, but that's maybe going too far.
प्रचार करने में तो बढ़िया लगता है, लेकिन ये उसका ये मतलब नहीं है, ये बहुत दूर चले गए कुछ लोग।
But the basic principle is the normal interpretation of what is clear and obvious.
लेकिन जो आधारभूत सिद्धांत है वो ये है कि क्या चीज स्पष्ट है और क्या चीज स्वतः अपने सामने हम पे प्रकट हो रही खंड में से।
You understand what we're saying?
आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? तो एक तरफ हो गया बड़ा ही चित्रात्मक प्रतीकात्मक हर चीज का चिन्ह बना दिया, तो हर चीज तो महिला के बारे में बात कर तो ये पुराना नियम हो गया नया नियम हो गया हर चीज को वो कर दिया, या फिर हर चीज को बिल्कुल जैसा है वैसे ही अक्षरक्ष वैसे उठा दे। इवन फाइव स्टोन्स एंड डेविड पिक्ड अप फाइव स्टोन्स और गुड समैरिटन दोस टू कॉइंस।
लिसन केयरफुली,
ध्यान से सुनिए इस बात का।
you cannot press the scripture and squeeze it too hard.
आप जबरदस्ती लेकर के परमेश्वर के वचन को फालतू में दबा नहीं सकते हैं और निचोड़ नहीं सकते हैं.
Especially when you're interpreting history or parable.
विशेष तौर से जब आप इतिहास का वर्णन कर रहे हैं और दृष्टांतों का वर्णन कर रहे हैं.
You need to understand the basic principles of interpreting these things.
आपको इन बातों का व्याख्यान करने के आधारभूत सिद्धांतों को समझना है आपको.
All right, our time is about up.
हमारा समय लगभग खत्म हो रहा है.
These are a few basic principles.
बहुत ही आधारभूत कुछ सिद्धांत हैं जिनके बारे में बात किया है.
And if you will be sensitive to the Bible when you're reading it and remember these principles, just have it in your mind and it will help you.
और आपको जब आप पढ़ेंगे तो इन सिद्धांतों के बारे में बाइबल पढ़ेंगे तो आपको इनके प्रति संवेदनशील रहना है.
All right, let's in closing look at this first example and you tell me what principle you need to be sensitive to.
और इससे पहले हम समाप्त करें, हम कुछ उदाहरण देखेंगे और हम आपसे चाहे आप हमको बताएंगे जो सिद्धांतों के बारे में बात किया उनमें से किन सिद्धांतों के प्रति हमको ध्यान रखना है, संवेदनशील रहना है.
Look in the book of Acts.
प्रेरित काम को देखिए मैं सर.
Chapter 16.
16 अध्याय देखिए मैं सर.
And verse 1.
और पहला पद देखिए.
Paul came to Derbe and Lystra, a disciple there named Timothy, his son of a Jewish woman, a believer, his father was a Greek.
और तब वो दर्बे और लुस्त्रा को भी गया और देखो वहां तिमोथियुस नामक एक चला था जो किसी विश्वासी यहूदी महिला का पुत्र था परंतु उसका पिता यूनानी था. प्रेरित काम 16 अध्याय पहला पद.
So it was a mixed background.
तो यहां पे ये मिला जुला पृष्ठभूमि का है ये.
But verse 2,
दूसरे पद में,
he was well spoken of by the brethren in the church.
लेकिन जो लुस्त्रा इकोनोमिया के जो भाई लोग हैं उनके बीच में उसका अच्छा नाम था.
He was a good example.
वो एक अच्छा उदाहरण था.
Verse 3.
तीसरा पद.
Paul wanted this man to go with him.
वो उसको अपने साथ लेके जाना मांगता था.
And he took him and circumcised him.
और उसने उसको ले आकर के उसको खतना किया.
Now Luke tells us why he circumcised him.
और यहाँ पे हमको वो बताता है, लूका बताता है कि क्यों उसका खतना किया गया. लूका उसका प्रेरितों का उसका 16 अध्याय उसका तीसरा पद.
Two basic things.
दो बातें हैं यहाँ पे देखिए.
What's the first thing?
पहली चीज क्या है यहाँ पे? हाँ जी,
because of the Jews that were in that vicinity.
क्योंकि उन यहूदियों कारण जो इस पृष्ठभूमि में थे.
And number two,
और दूसरी बात,
what the Jews knew.
और यहूदी लोग क्या जानते थे उसके बारे में.
And what did they know?
और क्या जानते थे उसके बारे में?
His father was a Greek, he was a half breed, and he wasn't circumcised.
उसके पिता यूनानी थे और वो आधे मिली उजली जाति का था और उसका खतना नहीं हुआ था.
Now were these Jews Christians?
क्या ये यहूदी लोग मसीह थे?
They were unconverted Jews.
ये लोग गैर मसीही यहूदी थे.
Why is Paul doing this? What principle? Where does he say? And what does he say in another book of the Bible?
तो यहाँ पे किस सिद्धांत का उपयोग पौलुस कर रहा है, क्यों उसने किया है, क्या क्यों करके वो ऐसा कर रहा है, क्या इसके बारे में उसने कहीं पे कुछ और वर्णन किया है?
To the Jew, I became a Jew in order that I might win the Jew.
यहूदियों को जीतने के लिए मैं यहूदी बन गया ताकि मैं उनको जीत सकूं.
So in order to keep these unbelieving Jews from not stumbling, but not accepting his message, he had Timothy circumcised.
तो जो यहूदी लोग हैं वो लोग उसका वचन सुने इसलिए वो उनके पास गया और उसने तिमोथियुस को उसने वहाँ पे खतना करवाया.
Galatians 2.
लेकिन मैं सारा खुली गलती हूँ.
So you have to understand the context.
आपको उस संदर्भ को समझना पड़ेगा.
You've got Timothy, who's half Greek, half Jew.
तो तिमोथियुस जो है वो आधा यहूदी है आधा यूनानी है.
The context is a context of unbelieving Jews.
संदर्भ ये है कि वहाँ पे गैर विश्वासी यहूदी लोग हैं.
And he's concerned about their reception of the gospel.
और वो इस बात से चिंतित है कि वे लोग उसका सुसमाचार सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे.
And he doesn't want anything to hinder their reception and listening to the gospel.
और वो नहीं चाहता है कि कोई भी चीज ऐसी हो जो उनके वचन को ग्रहण करने में रुकावट का कारण बने और फिर वो लोग वचन को ना सुने.
So the context is unconverted Jews.
तो संदर्भ ये है कि वहां पे ऐसे गैर विश्वासी
so that they may be more willing to receive the gospel message.
और फिर ऐसा करने के द्वारा वो लोग सुसमाचार सुनने के लिए तैयार हो सके.
Galatians chapter 2.
गलातियों का दूसरा अध्याय.
Paul went, he says in verse 1, after 14 years with to Jerusalem with Barnabas taking Titus.
और फिर 14 वर्ष के बाद बरनबास के साथ वो पुनः यरूशलेम को गया और साथ में तीतुस को भी लेके गया.
Now, Titus was apparently a Gentile.
और गलतियों से दूसरे अध्याय में तीतुस जो है ये यहूदी नहीं है, गैर यहूदी है.
Verse 3.
तीसरे पद में.
But not even Titus, who was with me, though he was a Greek, was compelled to be circumcised.
परंतु किसी ने तीतुस को जो मेरे साथ यूनानी होने पर भी खतना कराने के लिए विवश नहीं किया.
What was the problem?
समस्या क्या थी यहाँ पे?
Verse 4.
चौथे पद में.
False brethren seek brought in who sneaked in to spy out our liberty which we had in Christ Jesus.
Paulus कहता है कि ये उन छोटे भाइयों के कारण जो चोरी से घुस आए थे और हमारी स्वतंत्रता को जो मसीह यीशु में हमें प्राप्त है भेद लेकर हमें दास बनाना चाहते थे.
Verse 5.
पांचवे पद में.
But we didn't yield subjection to them for an hour so that the truth of the gospel would remain with you.
और उसने कहा कि हमने एक क्षण के लिए भी उनकी अधीनता स्वीकार ना की कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में भी बनी रहे.
Now what is the context?
और संदर्भ यहां पे क्या है?
Jewish legalist.
यहाँ पे यहूदी व्यवस्थावाद के लोग हैं.
They claim to be believers.
जो लोग ये इस बात का दावा तो करते हैं वो विश्वासी हैं.
But said this.
लेकिन वो ये कहते हैं.
Acts chapter 15.
पेतोकाम उसका 15 अध्याय.
Verse 1 and 2.
पहला और दूसरा पद.
Certain men came down from James.
कुछ लोग हैं जो याकूब के साथ आए.
And they said, unless you are circumcised according to the custom and law of Moses, you cannot be saved.
उन्होंने कहा जब तक तुम्हारा खतना ना हो मूसा की रीति के अनुसार तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है.
Now in Acts chapter 16, what was the issue?
और पेतोकाम उसके 15 अध्याय में वहां पे परिस्थिति क्या थी?
The reception of the gospel.
सुसमाचार का वहां पे ग्रहण करना.
And Galatians chapter 2, what was the issue?
और गलतियों के दूसरे अध्याय में वहां पे क्या विषय था?
The truth of the gospel.
सुसमाचार का सत्यता.
They said you must be circumcised in order to be saved.
उन्होंने कहा बचाए जाने के लिए तुम्हारा खतना होना जरूरी है.
And they wanted Titus to be circumcised.
और वो चाहते थे कि तीतुस का खतना हो ही हो.
But Paul said we would not subject ourselves to them for a moment.
और पौलुस ने कहा कि हम अपने आप को उनके अधीन नहीं करेंगे एक क्षण भी.
So that the truth of the gospel would remain with you.
और तो सुसमाचार का जो सत्य है वो आपके साथ बना रहेगा.
Because if I circumcise Titus according to their desire,
क्योंकि अगर मैं तीतुस को उनकी इच्छा के अनुसार खतना करूंगा,
it would support their false teaching that you had to be circumcised to be saved.
तो वो उनकी जो झूठी शिक्षा है पौलुस वो उसको ग्रहण करना पड़ेगा कि बचाया जाने के लिए खतना होना जरूरी है.
So I will not permit Titus to be circumcised.
तो कहता है कि मैं तीतुस को अनुमति नहीं दूंगा कि वो खतना पाए करे.
So what's the hermeneutical principle there?
तो फिर यहाँ पे क्या है सिद्धांत व्याख्या का?
Context.
संदर्भ.
Historical background.
ऐतिहासिक परिस्थिति.
Religious and cultural situation.
ऐतिहासिक और धार्मिक परिस्थितियाँ.
Paul wasn't being inconsistent or contradicting himself.
पौलुस जो है अपने आप को विरोधाभास नहीं कर रहा था, ना ही वो अनियमित हो रहा था किसी भी तरह से.
With Timothy, he didn't want anything to hinder the progress and reception of the gospel.
तिमोथियस के साथ वो कोई भी चीज ऐसा नहीं करना चाहता था जिसके द्वारा सुसमाचार की प्रगति और सुसमाचार के स्वीकार करने में रुकावट हो जाए.
And it was with unconverted Jews.
और वो ऐसे लोगों के बीच में जा रहा था जो कि गैर मसीही यहूदी लोग.
Galatians chapter 2.
लेकिन गलतियों के दूसरे अध्याय
में. He didn't want anything to hinder the truth of the gospel.
वो कोई चीज ऐसी चीज नहीं करना चाहते जो सुसमाचार के सत्यता में रुकावट का कारण बन सके.
This was with professed Jewish believers that nonetheless were legalists.
क्योंकि यहाँ पे वो ऐसे यहूदियों के साथ कार्य कर रहा था जो लोग मानते तो थे कि वो लोग विश्वासी हैं.
You understand the difference?
फर्क समझ रहे हैं आप की नहीं समझ रहे हैं?
Context.
संदर्भ.
Who is Paul dealing with?
किससे बात कर रहा है पौलुस?
What is the situation?
वहाँ की परिस्थिति क्या है?
What is the principle that is applied?
वो सिद्धांत क्या है जिसको यहाँ पे लागू किया
जा रहा
है?
Paul said to the Jew, I became as a Jew.
पौलुस कहता है यहूदियों के लिए मैं यहूदी बन गया.
That I might win the gospel.
ताकि मैं सुसमाचार के लिए उनको जीत सकूं.
But he said, I will not compromise the truth of the gospel.
लेकिन वो ये भी कहता है कि मैं सुसमाचार के सत्यता पे किसी भी तरह समझौता नहीं करूंगा.
Circumcise Titus, it will deny the truth of the gospel.
अगर मैं तीतुस को का खतना करूंगा तो मैं सुसमाचार का को नकारूंगा.
If I don't circumcise Timothy, it will hinder the advancement of the gospel.
लेकिन अगर मैं तीतुस का खतना नहीं करूंगा तो सुसमाचार के प्रगति में रुकावट पाई जाएगी.
You understand what we're saying?
आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं?
That's an application of a biblical and interpretive principle to answer this question.
तो ये जो है वचन के व्याख्यान के सिद्धांत का लागूकरण है.
But if you don't know the historical situation,
लेकिन आपको अगर ऐतिहासिक परिस्थिति नहीं मालूम है,
you don't know the particular context,
अगर आपको वहाँ का विशेष परिस्थिति नहीं मालूम,
you don't know what Paul is facing,
अगर आपको ये नहीं मालूम कि पौलुस किस चीज का सामना कर रहा है,
somebody ask you this question,
किसी ने आपसे प्रश्न पूछा है,
well, Paul circumcised Timothy,
पौलुस ने तो तीतुस का खतना किया,
but he wouldn't circumcise Titus,
लेकिन वो तीतुस को का खतना नहीं करता है,
why?
क्यों?
You say, I don't know.
पता नहीं.
Maybe he was confused.
तो हो सकता है पौलुस गड़बड़ा गया, उसको मालूम नहीं था क्या करना चाहिए.
Listen carefully.
लेकिन ध्यान से इस बात को.
You interpret verses in their historical, cultural, and immediate context.
आप पदों को, खंडों को उनके नजदीकी संदर्भ के के ध्यान में रखते हुए उसका आप व्याख्या करेंगे.
Tomorrow we'll run through these very quickly and see what other principles can be applied.
कल हम इन बाकी खंडों को देखेंगे और देखेंगे कैसे इन सिद्धांतों को हम लागू कर सकते हैं.
I know this is very simple.
मुझे मालूम बड़ी सरल बातें हैं.
But many Indian preachers have no idea about how to interpret the Word of God.
लेकिन बहुत सारे भारतीय प्रचारकों को नहीं मालूम है कैसे परमेश्वर के वचन की व्याख्या की जानी चाहिए.
So they look at somebody on TV.
तो इसलिए जब वो टीवी में किसी को देखते हैं.
And the preacher says, if you'll send me 100 rupees, I'll send you this handkerchief.
और वो प्रचारक कहता है, अगर तुम मुझे 100 रुपए भेजोगे, तो मैं ये रुमाल तुमको भेज दूँगा.
Because in the book of Acts, Peter laid his handkerchief on people.
क्योंकि प्रेरितों काम की पुस्तक में पत्रस ने लोगों के रुमालों पे हाथ छुआ.
And they were healed.
और जब उसने रुमाल को छुआ, तो वो लोग चंगे हो गए.
You send me 100 rupees.
आप मुझे 100 रुपए भेज दीजिए.
I'll send you this handkerchief.
तो मैं आपको ये रुमाल भेज दूँगा.
You lay it on yourself.
और आपने आपके पे रखिएगा.
You'll be healed.
और आप चंगे हो जाएंगे.
Just like Peter did.
जैसे पत्रस ने किया था वैसे ही.
Misinterpretation of the word of God.
परमेश्वर के वचन का गलत व्याख्यान.
Now this is very, very important.
बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है ये बात.
And you must be willing to study.
और आपको इसको पढ़ने के लिए तैयार होना है.
And you must understand these few basic principles.
और आपको इन कुछ आधारभूत सिद्धांतों को समझना है.
If you learn how to handle these most basic tools.
अगर आप इन बहुत ही बुनियादी यंत्रों को उपयोग करना सीख गए.
You can cut a straight path through the word of God.
तो फिर आप परमेश्वर के वचन के द्वारा एक सीधा मार्ग खोज निकालेंगे.
That's your responsibility.
ये आपकी जिम्मेदारी है.
Let's pray.
आइए हम लोग प्रार्थना करें.